Eyvallah. Aç. Cezakumullah. Sen ne düşürük hatta? Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa amma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadurrahmanirrahim. Yemşûne alel ardı hevnav. Ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlu selâma. Vellezîne yebîtûne lirabbihim succeden ve kıyâma. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی یہ آخری آیات عباد الرحمن کے عنوان کے تحت جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا ہے, آیات نمبر 63 سے 77 تک. تو ان کا ترجمہ, خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. تو پچھلی کلاس میں ہم نے معارف و مسائل پڑھنے شروع کیے تھے اور پیج نمبر 501 پر ہی کہیں ہم نے روکا تھا. تو ہم یہیں سے پھر پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ان آیات کے معارف و مسائل میں فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین پر کفار و مشرکین جو اس پر اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے, اور اس میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا. آخر صورت میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد, اعمال, اخلاق, عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہیں. تو اس کے تحت ہم نے آپ کے سامنے ایمان کامل اور ایمان ناقص کا تصور رکھا تھا کہ ایمان ناقص کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے, اس کے اندر روح موجود ہے, لیکن صحت اس کی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایمان ناقص کہلائے گا کہ روح تو موجود ہے, ایمان موجود ہے, لیکن صحت اچھی نہیں ہے. اب جیسے جیسے اس کی صحت اچھی ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس کو کہیں گے کہ یہ کامل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان کامل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بہت صحت مند انسان ہو, یعنی زندہ بھی ہے ظاہر ہے اور صحت مند بھی ہے. تو اس کے برعکس کفر کی مثال کیسی ہے کہ جس کے اندر روح ہی موجود نہ ہو, بالکل ہی وہ یعنی مردہ ہو, کچھ بھی نہ کر سکتا ہو, روح ہی موجود نہیں ہے تو وہ کیسے کچھ کرے گا, تو وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کافر کی مثال مردہ انسان کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایمان ناقص کی مثال, یہ ساری تفصیل جو سمجھائی گئی تھی نا, اس کا مقصد یہ تھا, یہ سمجھانا تھا کہ ایمان ناقص اس کو نہیں کہتے کہ کسی شخص کے اندر 50% کفر ہے اور 50% ایمان ہے تو اس کو ایمان ناقص کہا جائے گا. نہیں, ایمان ناقص کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدھا ایمان آدھا کفر. کیوں؟ اس لیے کہ کفر اگر 1% بھی ہے, بلکہ 1% تو کیا 0.01% بھی اگر کفر ہے تو پورا کا پورا کفر. ٹھیک ہے, پورا پورا کا پورا بندہ ہی کافر کہلائے گا. 0.01% کفر بھی اگر کسی کے اندر آ جائے نا تو پورا بندہ ہی کافر کہلائے گا, وہ بندہ مومن نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مثال سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے. کسی کو اس کے اوپر کوئی سوال ہے؟ یہ کانسیپٹ اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ کفر کی مراد مردہ انسان کی ہے اور ایمان کی مثال زندہ انسان کی ہے. ٹھیک ہے, اب زندہ کے اندر ایک کمزور اور ناتواں قسم کا انسان ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ گویا کہ ایمان ناقص ہے, لیکن اگر وہ صحت مند ہے تو وہ ایمان کامل کہلائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ایمان کامل حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ जब इंसान जैसे जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता चला जाता है हर मामले के अंदर, ठीक है, अकायद के मामले में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अकायद के मुताबिक अपने अकीदों को मना लेता है, अमाल को भी, अपने अखलाक को भी, अपनी आदात को भी, तो उसका ईमान कामिल होता चला जाता है और जितना जितना करता चला जाएगा उतना उतना कामिल होता चला जाएगा। तो इसके तहत पिछली क्लास में एक और बात करी थी कि बहादुरी दिखाना, और जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के ज़माने में मास्क ना पहनना, राइट, ये ईमान कामिल की अलामत नहीं है कि जी मुझे तो बड़ा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर, मेरा ईमान बड़ा कामिल है, इस वजह से मैं मास्क नहीं पहुँचूंगा, नहीं पहनूंगा। ये ईमान कामिल यानी ईमान ऐसे कामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ईमान कामिल जो है ना वो अताअत के जरिए से होता है। जो अताअत करेगा उसका ईमान कामिल होगा, जो अताअत नहीं करेगा उसका ईमान नाकिस ही रहेगा, चाहे वो कितनी ही बहादुरी दिखाए, मैदान जंग के अंदर उतर जाए जा करके और कोई भी जरा बख्तर वगैरह यानी कोई भी आर्मरी आर्मर वगैरह कोई ना पहने, ठीक है, और दुश्मन के सामने जाके खड़ा हो जाए कि मारो मुझे, मारो मुझे, तुम नहीं मार सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, ये ईमान कामिल नहीं होता, ठीक है। आगे चले, कुरान करीम ने ऐसे मखसूस बंदों को इबादुर रहमान का लकब अता फरमाया जो उनका सबसे बड़ा एजाज है। यूं तो सारी ही मखलूक तकवीनी और जबरी तौर पर अल्लाह की बंदगी और उसकी मशीयत व इरादे के ताबे है, उसके इरादे के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर यहाँ बंदगी से मुराद तशरीई और इख्तियारी बंदगी है, ठीक है। तो यानी एक इंसान अल्लाह का बंदा कैसे बनता है, जब वो उन बातों में जिन बातों में अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है उन बातों में अल्लाह की मानता है, तब वो अल्लाह का बंदा बनता है। जिन बातों में इख्तियार ही नहीं है तो उनमें तो ना मानने की उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाने से पेट जो है वो उसका भरेगा, भूख उसकी मिटेगी, ठीक है, तो ये तो गैर इख्तियारी चीज है ना कि भूख मिटना, खाना खाने से भूख का मिटना। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो खाना तो खाऊंगा लेकिन भूख नहीं मिटने दूंगा, तो भाई भूख का मिटना आपके इख्तियार में भी थोड़ी है, आपके इख्तियार में तो खाना खाना था, ठीक है ना। अगर आपने खाना खा लिया अब भूख तो मिटेगी चाहे आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। तो भाई भूख का मिटना इख्तियारी अमल नहीं है, खाना खाना इख्तियारी अमल था, ठीक है ना, आपकी चॉइस है कि आप खाना खाएं या आप खाना ना खाएं, ठीक है। तो ये फर्क होता है इख्तियारी काम में और गैर इख्तियारी काम में। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, किताबों में लिखा हुआ है पता नहीं सही है गलत है, लेकिन किसी ने पूछा, लिखा हुआ है कि किसी ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि जी हमारा इख्तियार कहाँ तक है और हमारा इख्तियार कहाँ तक खत्म हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा एक टांग जमीन से उठा लो, तो उसने टांग उठा ली, तो फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरी टांग भी उठाओ, तो उसने कहा ये तो मेरे अख्तियार में नहीं है कि मैं दूसरी टांग भी उठाऊं, ठीक है ना, एक बंदा एक वक्त में एक ही टांग उठा सकता है ना। तो उन्होंने इस मिसाल के जरिए से समझा दिया कि देखो तुम्हारा इख्तियार जो है एक टांग उठाने तक था ना, ठीक है ना, अब दूसरी टांग जो है ये भी तुम्हारी ही है ना, ठीक है ना, तुम्हारा इख्तियार है ना अपने टांग के ऊपर, लेकिन क्या तुम उसको उठा सकते हो इस हालत में कि पहली टांग भी तुम्हारी उठी हुई हो, नहीं नहीं उठा सकते ना, ठीक है, गिर पड़ोगे जाहिर है। तो ये है हमारी हकीकत ना, कि हमारी अपनी बॉडी का एक हिस्सा होता है लेकिन हम उसको भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी मजे की एक और ऑब्जर्वेशन लोगों ने शेयर करी थी किसी जमाने में, कि आप जो है ना वो अपनी टांगों को यानी किसी कुर्सी पे बैठ जाएं और दोनों टांगों को उठा लें, अब तो आप उठा सकते हैं ना कुर्सी पे बैठने के बाद, ठीक है, तो आप अपनी दोनों टांगों को उठा लें, जमीन से ऊंचा कर लें और इन दोनों को जो है ना वो घुमाएं, ठीक है ना, साइडवेज घुमाएं, जैसे कि वो क्लॉकवाइज होता है ना, जिस तरह क्लॉक की सुई घूमती है, क्लॉकवाइज घूमना उसको कहते हैं, तो अपनी दोनों टांगों को क्लॉकवाइज घुमाएं, तो आप ये कर सकते हैं, दोनों टांगों को क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर अगर आप ये कहें कि नहीं, अब आप जो है ना अपनी एक टांग को क्लॉकवाइज घुमाएं और दूसरी टांग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उल्टी तरफ, ठीक है ना, तो अब घुमा के दिखाएं, नहीं घुमा सकते। हालांकि बजाहिर कितनी आसान चीज लगती है, भाई एक टांग को मैं ऐसे घुमाऊं, दूसरी टांग को दूसरी तरह घुमाऊं, दोनों टांग ही मेरी हवा में मौलक है, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये है हमारा इख्तियार, इतना सा है हमारा इख्तियार अपने ऊपर भी, ठीक है। तो हम फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हालांकि हमारी की हैसियत क्या है, वक्त क्या है हमारी, ठीक है। तो बंदगी से मुराद जो होती है कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत के अहकाम दिए हैं तो उनके अंदर अल्लाह की मान करके चला जाए। तो उसको ये लिखते हैं कि यानी अपने इख्तियार से अपने वजूद और अपनी तमाम ख्वाहिशात और तमाम कामों को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे बना देना। सही है, तो ख्वाहिशात और अपने कामों को अल्लाह की मर्जी के ताबे बना देना। ऐसे मखसूस बंदे जिनको हक ताला ने खुद अपना बंदा कहकर, अपना बंदा, ठीक है, जैसे कि कोई माँ अपने बेटे से बहुत खुश होती है ना, तो कहती है ये तो मेरा बेटा है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है आपका बेटा है, बाकी भी सारे आपके बेटे हैं, लेकिन जब इसने कोई बहुत ही पसंदीदा काम किया होता है माँ का, तो वो कहता है ये तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है ये तो, है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो ऐसे बंदों को अपना बंदा कहकर इज्जत बख्शी है, उनके औसाफ आखिर सूरत तक बयान किए हैं, दरमियान में कुफ्र मासियत से तौबा और उसके असरात का जिक्र आया है, ठीक है। तो सिफतें बयान करते करते बीच में जो है वो तौबा का जिक्र किया, और तौबा से क्या फायदा होता है उसका भी जिक्र किया, और फिर दोबारा उनकी सिफतें बयान करनी शुरू कर दी। यहां इन मखसूस बंदों को अपना बंदा फरमाकर उनको एजाजी लकब देना था, मगर अपनी तरफ निस्बत करने के लिए अल्लाह ताला के सब अस्माए हुस्ना और सिफात कमाल में से इस जगह लफ्ज रहमान का इंतखाब शायद इसलिए किया गया कि मकबूलीन की आदात व सिफात अल्लाह ताला की सिफत रहमानियत की तर्जुमान और मजहर होना चाहिए, उसकी तरफ इशारा करना मंजूर है, ठीक है। अल्लाह ताला की तो बहुत सी सिफात हैं, सिफात के नाम 99 हैं, और उन 99 के अलावा भी 300 नाम तो काफी मशहूर हैं, ठीक है। जो लोग अल्लाह ताला की सिफाती नाम हिफ्स करते हैं ना, तो हमने देखा कि उमूमन वो 300 नाम हिफ्स करते हैं, ठीक है, और फिर 300 के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं शायद, ठीक है। तो इन नामों में हर नाम जो है वो अल्लाह ताला की एक सिफत बयान करता है, ठीक है, कहार भी है, जब्बार भी है, जबरूद भी है, और यानी मन्नान भी है, हन्नान भी है, और रहीम भी है, इतने सारे प्यारे प्यारे नाम है, सारे ही अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने खास इन बंदों को रहमान के साथ क्यों मंसूब किया, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, क्योंकि रहमान एक ऐसी सिफत है कि जो कि ना जिसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वसत है, बहुत उसके अंदर यानी ओपननेस है, कि ये उस सिफत यानी जिसके अंदर ये सिफत होती है रहमानियत की सिफत, तो वो जो है ना अपने यानी हर हाल में बल्कि हर एक के साथ अच्छा मामला करता है, ठीक है, अपने मानने वालों के साथ भी अच्छा मामला करता है और ना मानने वालों के साथ भी अच्छा मामला करता है, अपनों के साथ भी और परायों के साथ भी, ठीक है। इसको हमारे हजरत ने कई बार एक्सप्लेन किया अपने बयान के अंदर रमजान मुबारक में जो तफसीर चल रही थी सूरह रहमान की, तो उसमें ये भी बताते थे कि एक किसी शख्स के अंदर एक सिफत होती है कि वो मालदार है, बहुत माल का मालिक है, ठीक है, ये एक सिफत है मालदार होना, और दूसरी सिफत है सखी होना, यानी अपने आप को अपने माल को खर्च करने की भी उसके अंदर का जज्बा हो, ठीक है। तो अगर कोई शख्स मालदार है लेकिन सखी नहीं है तो उसके माल का किसी दूसरे को फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा भी फायदा तो उसको खुद होगा, अगर वो अपने ऊपर खर्च करता है तो किसी दूसरे को तो फायदा नहीं होगा ना। उसी तरह अगर कोई शख्स सखी हो, बहुत ज्यादा खर्च करने का जज्बा रखता हो अपने ऊपर, अपने अपने अंदर, ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ माल ही ना हो, तो फिर उसकी सखावत का क्या फायदा है? कुछ है ही नहीं उसके पल्ले, वो क्या दूसरों के ऊपर खर्च करेगा। तो भाई फायदा तो उस वक्त होगा ना जब मालदार भी हो और सखी भी हो। तो अल्लाह ताला का यही मामला है कि अल्लाह ताला की रहमत भी बेपाया है, कोई इसकी इसकी लिमिट नहीं है, कोई इसकी हद नहीं है, और अल्लाह ताला इस रहमत को खर्च करने के भी कभी जज्बा रखते हैं और खर्च करते भी हैं, ठीक है। तो रहमान की सिफत ऐसी है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है ना, वो उसका होना ये तो रहीमी की सिफत से काफी डिस्क्राइब हो जाता है कि अल्लाह ताला रहीम है, उनके से उनकी रहमत की कोई हद नहीं है। लेकिन रहमानियत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहीम भी हैं और रहमत को खर्च भी करते हैं, ठीक है। हाथ यानी दोनों हाथ, जिस तरह इंसानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों हाथों से खर्च करते हैं, ठीक है, इंसानों की मिसाल दोनों हाथों वाली है। तो अल्लाह ताला तो इन सिफात से बालतर है कि एक हाथ दो हाथ वाला मामला तो नहीं है। अल्लाह ताला यानी खोल करके अपने खजानों के मुंह खर्च करते हैं, ठीक है। तो अब एक इंसान इस तरह से तो नहीं कर सकता जिस तरह से अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला के खजानों की कोई यानी कोई हद ही नहीं है। इंसान के पास तो जो कुछ भी होगा उसकी हद होती है, महदूद होते हैं उसके पास, ठीक है। लेकिन जज्बा जज्बे का होना कि वो अपनों परायों दोनों के ऊपर जो है वो खर्च करे और उनकी मदद करे, ये सिफत जो है ना, ये अल्लाह ताला की रहमानियत का परतौ होती है, उसका मजहर होती है, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने यानी शायद भी लिखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि किसी हदीस से ना एग्जैक्टली जो है वो इसकी तफसीर बयान नहीं हुई है कि अल्लाह ताला ने इबाद के साथ रहमान का सिफाती नाम क्यों इस्तेमाल किया। अब चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी बात को कंफर्म नहीं कर दिया ना, तो अब जो मुफस्सरीन हैं उनके लिए जरूरी है कि शायद का लफ्ज इस्तेमाल करें, इहतमाली दर्जे में बात करें, यकीनी दर्जे में बात नहीं कर सकते। यकीनी दर्जे में तो सिर्फ उस वक्त बात कर सकते जब नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया होता कि इसका मतलब यही है, ठीक है ना। कल की क्लास के अंदर किसी ने सवाल भी किया था कि किसी मुफस्सिर ने किसी चीज का मतलब जो है वो एक तरह बयान किया, दूसरे मुफस्सिर ने किसी चीज का मतलब दूसरी तरह बयान किया, जबकि दोनों के दिल में अल्लाह ताला ने ही बात डाली, ठीक है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस बात को बयान नहीं किया था, ठीक है ना, ओपन छोड़ दिया था। तो इस वजह से मुफस्सरीन जो है वो उसको मल्टीपल तरीकों से बयान करते हैं, ठीक है, और उसके साथ शायद का लफ्ज लगा देते हैं, इहतमाली दर्जे में बयान करते हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की मखसूस सिफात व अलामात। अब यहाँ से एक एक अलामत के बारे में तफसीर करनी शुरू की। तो फरमाया कि आयात मस्कूरा में अल्लाह के मखसूस और मकबूल बंदों की 13 सिफात व अलामात का जिक्र आया है। 13, अजीब 13 का जो अल्लाह ताला ने अदद यहाँ पे इस्तेमाल किया है, हो सकता है इसकी भी तफसीर किसी ने लिखी हो कि भाई 13 सिफात क्यों बयान किए हैं, लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उसका तذکرہ यहाँ पर नहीं किया है। तो हम तो इसी तफसीर को पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम मजीद इसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि 13 क्यों बयान करी है। हो सकता है दूसरे मुफस्सरीन ने इसकी भी रीजंस लिखी हों। तो बहरहाल 13 अलामात का जिक्र आया है जिनमें अकायद की दुरुस्ती और अपने जाती आमाल में, ख्वाह वो बदन से मुतालिक हों या माल से, सब में अल्लाह व रसूल की के अहकाम और मर्जी की पाबंदी, दूसरे इंसान के साथ मुआशरत और ताल्लुकात की नौयत, रात दिन की इबादत गुजारी के साथ खौफ खुदा, तमाम गुनाहों से बचने का एहतमाम, और अपने साथ अपनी औलाद व अजवाज की इस्लाह की फिक्र वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो इन 13 सिफात के ना गोया इन्होंने यहाँ पे समरी लिख दी है, चीदा चीदा बयान कर दिए हैं कि तमाम मामलात में यानी जानी हो या माली हो, इन सब में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी, दूसरों के साथ अच्छे मामलात करना, फिर इबादत के अंदर अपने आप को एग्जर्ट करना یعنی صرف فرائض کی پابندی نہیں، فرائض کی پابندی تو پہلی صفت میں آ گئی نا، کہ جانی اور مالی تمام معاملات کے اندر اللہ کے حکم کی پابندی، یہ کہلاتا ہے فرض کی ادائیگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حکم جب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ چیز آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس، تو پہلی صفت میں فرائض کی پابندی آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور تیسری صفت میں رات دن کی عبادت گزاری، یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نفل ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ رات دن جو ہے وہ نفلیں پڑھتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، اور یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں یہ فرائض کی پابندی سب سے پہلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ بھی جو ہے فرض کے درجے میں ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ تو یعنی اہتمام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ گناہوں سے بچنا تو فرض ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے یہ باقاعدہ اہتمام بھی کرتے ہیں. اہتمام کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ماحول کی فراہمی کا انتظام کرنا، اچھے ماحول کا انتظام کرنا، یہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ٹھیک ہے؟ گناہوں سے بچنے کا اہتمام خالی یہ نہیں مت کرو مت کرو مت کرو، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر اپنے بچوں کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کو صرف بولنا شروع، نہ کرو مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مت کرو مت کرو بول دینا جو ہے نا، یہ اہتمام کرنا نہیں ہے. بھائی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا بچہ گناہ میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ایسا معاملہ ہوا، کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچنا، یہ فکر کرنا، پھر اس کے بعد یہ سوچنا کہ جو میں اس کو کہہ رہی ہوں گناہ مت کرو، تو اگر وہ گناہ میرے کہنے پر چھوڑے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، کس کام کے اندر انوالو ہوگا، تو اس کو کوئی متبادل مہیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ متبادل، کوئی آلٹرنیٹ روٹ، کوئی آلٹرنیٹ یعنی مشغولیت کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اہتمام کہلاتی ہیں، صحیح ہے؟ تو صرف آرڈر دے دینا جو ہے نا یہ اہتمام نہیں کہلاتا. اہتمام کے لیے پھر آپ کو یہ سارے کے ساری چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے، اور ان کی پھر آپ کو حل نکالنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے اولاد اور ازواج کی، یعنی اپنی بیویوں کی، اپنے شوہروں کی، یعنی یہ صرف ازواج میں جو ہے وہ بیویاں نہیں ہیں کہ جی شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ بیویوں کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں، نہیں، بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہروں کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ تو ازواج میں بیوی اور شوہر دونوں آ جاتے ہیں، ان کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہے اس ان ٹاپکس کے اوپر، یہ جو سمری کری ہے 13 صفات کی؟ آگے چلیں پھر. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے عباد الرحمن ہے، تو ان کی تو ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ عباد ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اسی لفظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، ان کی تعریف کری ہے، ٹھیک ہے؟ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا ترجمہ ہے بندہ، اردو میں اس کو بندہ کہتے ہیں، جو اپنے آقا کا مملوک ہو. مملوک یہ ملک سے نکلا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آقا کی کمپلیٹ اونرشپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ مملوک ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ملازم ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مملوک اور ملازم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملازم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک تنخواہ اس کے ساتھ سیٹ کریں، اور اس تنخواہ کے بدلے میں وہ آپ سے وعدہ کرے کہ میں آپ کو فلانی خدمات مہیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کے گھر میں آ کر کے برتن دھو دیا کروں گا، और उसके बदले में आप उसको 1,000 रुपए दे दें, महीने के 1,000 रुपए, ठीक है ना, उसके बदले में वो बर्तन धोएगा। अब क्या है कि अगर आप उसको 1,000 रुपए नहीं देंगे तो वो बर्तन नहीं धोएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसके साथ एक वायदा किया था। तो जब अगर आप अपने उस वायदे को पूरा नहीं कर रहे तो वो भी अपने वायदे को पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उसको ओन नहीं करते, आप उसके मालिक नहीं होते, ठीक है ना, आप सिर्फ उसकी उस खिदमत के मालिक हैं कि जिसके बदले आपको आप उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अगर अपनी वो वाली खिदमत आपको देगा तब आप उसको पैसे देंगे, अगर वो नहीं देगा तो आप उसको पैसे नहीं देंगे, इससे ज्यादा आप उससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि ममलूक जो होता है ना, ये ममलूक जो होता है ये सिर्फ अपनी खिदमत आपको नहीं मुहैया करता, बल्कि ये पूरा अपना आप आपके हवाले कर देता है, इसका पूरा वजूद आपकी मिल्कियत में होता है, इसका पूरा जिस्म, इसकी यानी इसकी इसके जिंदगी के 24 घंटे मालिक के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ममलूक, इसी को उर्दू जुबान में बंदा कहते हैं, अरबी जुबान में इसको अब्द कहते हैं, एक्चुअली उर्दू में उसको गुलाम भी कहते हैं, ठीक है ना, उर्दू में उसको गुलाम कहते हैं और अरबी में उसको अब्द कहते हैं, या ममलूक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका वजूद और उसके तमाम इख्तियारात व आमाल आका के हुक्म व मर्जी पर दायर होते हैं, यानी इनका दारोमदार आका के हुक्म और मर्जी के ऊपर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा, जो लोग रमजान मुबारक की क्लास में थे, जो नए लोग हैं उनकी खातिर ये वाक्य दोबारा से या जो सुनाएगा, कि एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मैंने अल्लाह ताला की बंदगी एक गुलाम लड़के से सीखी, एक गुलाम लड़का था उससे मैंने अल्लाह की बंदगी सीखी। तो पूछा कैसे, उसने कहा कि मैं एक लड़के को ना जो कि गुलाम था उसको बाजार से खरीद करके लाया, ठीक है ना, क्योंकि गुलाम जो है उनकी बाकायदा तिजारत भी होती थी, कि कोई अपना गुलाम जो है वो बाजार में ला करके बेच देता था और दूसरे लोग उसको उस माल के ऊपर यानी उस कीमत पे खरीद लेते थे, जो कीमत जिस कीमत का तो वो मुतालबा करता था। गुलाम बनते कैसे थे, ठीक है, गुलाम बनने का एक ही रास्ता है, ठीक है, किसी इंसान के जो कि आजाद इंसान है, ठीक है, उसके गुलाम बनने का एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है कि मैदान जंग में उसको कैदी बना लिया जाए, मुखालिफ जो जो फौज है ना वो उसको कैदी बना ले, ठीक है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो कैदी बनाए जाते थे ना, तो उनको जो है वो या तो कत्ल कर दिया जाता था, ठीक है, या तो उनको कत्ल कर दो, खत्म बात, ठीक है ना, या ये कि उनको किसी प्रिजन के अंदर डाल दें, आप किसी जेल सेल के अंदर डाल दें, है ना, कैद खाने में डाल दें, ठीक है ना, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या था कि इनको गुलाम बना लिया जाए, ठीक है। गुलाम बना लेने का मतलब ये होता था कि जो जीतने वाली कौम होती थी ना, तो उस कौम के अफराद में इन कैदियों को बांट दिया जाता था कि भाई ये जो दुश्मन कौम का मर्द है ये आपका गुलाम है, दूसरा मर्द जो है ना ये आपका गुलाम है, तीसरा मर्द ये आपका गुलाम है। अच्छा, कुछ औरतें भी अगर कैदी बनी, क्योंकि कभी ऐसा होता था कि जो फौजें लड़ती थी ना, तो वो फौजें जो है वो अपने घर वालों को भी साथ लेकर के आती थी, औरतें भी वहां मौजूद होती थी, ठीक है ना। तो जब वो शिकस्त खाती थी तो फिर औरतें भी कैदी कैदी बनती थी, तो औरतें जो हैं वो बांदी कहलाती थी, तो उन बांदियों को भी फिर जो जीतने वाली कौम होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी, ठीक है, कि भाई ये आपकी बांदी है, ये आपकी बांदी है, आपकी बांदी है, आपकी बांदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना कोई यानी इस जंग से पहले ये लोग आजाद थे, ठीक है, लेकिन इस जंग के बाद ये गुलाम बना लिए गए, ठीक है। चौथा रास्ता ये था कि आप उन कैदियों को आजाद करने के जाओ भाई वापस अपने मुल्क में, सही है। आजाद कर दें आप उनको, वापस जाओ अपने मुल्क में। तो ये चार रास्ते होते थे, इन चार रास्तों में से एक रास्ता क्या था, गुलाम और बांदी बना लेना। ठीक है, अब गुलाम और बांदी बना लेने में क्या फायदे होते थे और बाकी जो रास्ते होते थे, बाकी जो तीन रास्ते हैं उनके अंदर क्या नुकसान होते थे, वो एक बड़ी लंबी तफसील हो जाएगी, तो फिर उसको अभी छोड़ देते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो अलग बात है, लेकिन उस तफसील में जाए बगैर या जिस आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर असल में वो टॉपिक तो नहीं है। तो उन साहब ने कहा कि मैं एक बाजार से ना एक लड़का बतौर गुलाम खरीद करके लाया, तो मैंने घर में आकर के उस लड़के से पूछा कि बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं उस नाम से तुम्हें पुकारा करूं। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जिस नाम से भी आप मुझे पुकारेंगे ना, वही मेरा नाम है। उन्होंने कहा अच्छा, तो बताओ तुम खाना खाने में क्या पसंद करते हो, यानी कोई खास तुम्हारी रजा है, कोई ऐसी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है तुम्हारी ना? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि आप मुझे जो खिलाएंगे वही मैं खाऊंगा। अच्छा भाई तुम किस तरह के यानी कपड़े पहनते हो, तो जो आप मुझे पहनाएंगे, उसने जवाब दिया, मैं वही पहनूंगा। तुम कमरे के अंदर किस किस्म की तुम्हें जरूरियात होती हैं, क्या क्या चीजें तुम अपने कमरे के अंदर पसंद करते, बड़े नेक आदमी थे अपने गुलाम से सारे सवाल कर रहे हैं, है ना। तो उस पर उसने जवाब दिया कि जो चीजें आप मुझे मुहैया करेंगे मैं वो ले लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, तो मेरी हर जरूरत जो है ना वो आपके मुहैया करने के ऊपर उसका दारोमदार है। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मेरा अपना कोई नाम नहीं है, मेरा अपना कोई डिमांड्स नहीं है, ठीक है। तो वो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब मैंने उस लड़के से ये जवाब सुने ना, तो मुझे ख्याल आया कि हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं, हमारा भी अल्लाह ताला के साथ यही मामला होना चाहिए कि अल्लाह ताला से अपनी डिमांड्स फुलफिल कराने के बजाय हम अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करें, और जो अल्लाह ताला ने हमारे बारे में फैसला किया है ना, हम उसके ऊपर राजी और खुश रहें। ठीक है, तो ये असल बंदा होता है। तो वही यहाँ पे हजरत ने लिखा कि उसके तमाम इख्तियारात व आमाल आका के हुक्म और मर्जी पर दायर होते हैं। अल्लाह ताला का बंदा कहलाने का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जो अपने अकायद व ख्यालात को, अकायद और ख्यालात ये दो अलग अलग लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए, ठीक है, तो उसकी वजह ये समझ में आती है कि जब हम लफ्ज अकायद इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे हम समझते हैं कि जो बड़ी टेक्निकल किस्म की चीजें होती हैं ना, कि भाई अल्लाह ताला किसी का ना, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सब अल्लाह ताला के बारे में अकायद हैं, राइट। और नबी अलैहि सलाम जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, राइट, और आप के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और आप जो है वो बंदे हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है वो दीगर रसूलों के बारे में अकायद हो गए, फिर किताबों के बारे में अकायद हो गए, फिर क़यामत के बारे में अकायद हो गए, फिर योम आखिरत के बारे में अकायद हो गए, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में अकायद हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको हम अकायद समझते हैं, ये हैं वाकई अकायद। ख्यालात का मतलब क्या होता है, ख्यालात से मुराद ये है कि इंसान की सोच क्या है, क्या वो वाकई अपनी सोचों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है कि नहीं देता है, ठीक है, अल्लाह ताला के दीन को सब चीजों से मुकाबले में ज्यादा अपने लिए फायदेमंद तसव्वुर करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये चीजें जो है ना, ये अकायद में नहीं आती, ये बातें जो है वो सोचों में आती हैं, ख्यालात में आती हैं, तसव्वुरात में आती हैं। क्या इस शख्स के तसव्वुरात भी सही हैं कि नहीं है, या ये कि अकीदे के एतबार से तो ये बड़ा पक्का मोमिन है, सारे अकायदे इसके ठीक हैं, लेकिन ये मखलूक से ऐसे डरता है कि जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, राइट, मखलूक से ऐसे डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। तो इसके अकायद तो ठीक है, लेकिन इसके ख्यालात ठीक नहीं है। ये मखलूक को खुश करने के लिए वो कुछ कर गुजरता है जो अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, जो बातें अल्लाह को नाराज करती हैं ये वो भी कर गुजरता है ताकि मखलूक इससे खुश हो जाए, ताकि मखलूक की वाह वाह इसको हासिल हो जाए, एप्रिसिएशन इसको हासिल हो जाए। तो ऐसा शख्स जो है गो के थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसके अकायद सारे सही हैं। हाँ भाई, अल्लाह ये कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला के अलावा जो है वो कोई खालिक नहीं है, मालिक नहीं है, राजक नहीं है, लेकिन इसकी सोच गलत है, ठीक है ना, इसके तसव्वुरात गलत हैं। ये मखलूक की खुशी को, रजामंदी को अल्लाह के रजामंदी के ऊपर फौकियत दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से सारे इसके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सारे अकायद इसके ठीक हैं, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ तरीक़े जिंदगी है, जिसको सुन्नत तरीक़े जिंदगी कहते हैं, उसको वो अपनी शर्म और शर्मिंदगी का सबब समझता है। सुन्नत तरीक़े जिंदगी को, सुन्नत लिबास को, सुन्नत तरीके से खाना खाने को, सुन्नत तरीके से जो है वो अपने घर में जिंदा रहने को, जिंदगी गुजारने को, ये बायसे नंग, बायसे शर्म समझता है। और काफिरों के तरीके से रहना, काफिरों की बोली बोलना, काफिरों के अंदाज में जो है वो खाना खाना, काफिरों के अंदाज में जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, काफिरों के जैसा लिबास पहनना, उसको वो इज्जत का सबब समझता है ना। तो अकायद तो इसके ठीक है, लेकिन तसव्वुरात इसके गलत हैं। ऐसा शख्स अल्लाह का बंदा कहलाने के काबिल नहीं है, इबादुर्रहमान की सफ में ये खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अकायद बेशक इसके ठीक हैं, लेकिन ख्यालात और तसव्वुरात इसके गंदे हैं, नजिस हैं। अभी भी फर्क समझ में आया आपको? किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर? ठीक, तो इसी वजह से ना इन दोनों अल्फाज को अलग अलग यहां पर बयान किया है, अकायद और ख्यालात। और अपने हर इरादे को और ख्वाहिश को, ठीक है ना, यानी इसका इरादा क्या है कि भाई मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, मेरी मौत कलमे पर आ जाए, राइट, ये इसका इरादा है। ये इसने अपनी जिंदगी का गोल बनाया है कि मेरी मौत अच्छी होनी चाहिए, मेरी जिंदगी अच्छी हो या ना हो, ठीक है, जिंदगी अच्छी बनाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा गोल क्या है जिंदगी का, मेरी मौत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका इरादा हुआ। ख्वाहिश इसकी क्या कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाऊं, ये उसकी ख्वाहिश है, दिल की तमन्ना है उसकी, राइट, नबी अलैहिस्सलाम का अच्छा उम्मती बन जाऊं, ये ख्वाहिश कहलाएगी, ठीक है। और अपनी हर हरकत व सुकून को, यानी जब ये हरकत करता है तो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हरकत करता है, किसी फजूल काम के अंदर, हराम या मकरूह काम के अंदर ही हरकत नहीं करता अपने बदन को, ठीक है ना। और जब ये साकिन रहता है, यानी बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो अब बैठे बैठे ये मौसीकी नहीं सुनेगा, बैठे बैठे ये टीवी नहीं देखेगा, बैठे बैठे जो है ये गीबतें नहीं करेगा, राइट, या बैठे बैठे जो है ना वो गुनाह के ख्यालात अपने जहन में नहीं लाएगा, कि सुकून की हालत में बैठा हुआ है लेकिन दिमाग के अंदर इसकी कोई गंदी तस्वीरें चल रही हैं, कोई गंदे ख्यालात चल रहे हैं। तो इसकी हरकत भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, इसका सुकून भी अपने रब के हुक्म के मुताबिक, ठीक है ना, और उसकी मर्जी के ताबे रखे। हर वक्त गोश बर आवाज रहे कि जिस काम का हुक्म हो वो बजा लाऊं, गोश बर आवाज। गोश किस चीज को कहते हैं जी? गोश्त को कहते हैं, गोश जो है वो कानों को कहते हैं, कान, जैसे खरगोश जो होते हैं ना, खरगोश, रैबिट्स, उनको खरगोश क्यों कहते हैं कि उनके बड़े अजीब से कान होते हैं, लंबे लंबे से ऐसे, है ना, तो इस वजह से ना उसको खरगोश कहते हैं। खर का मतलब होता है खराब, फारसी जुबान का लफ्ज है, और गोश का मतलब होता है कान, ठीक है, तो गोश का मतलब हुआ कान। तो गोश बर आवाज का मतलब कि जैसे कहते हैं ना हम, हर वक्त इसके कान खड़े रहें, हर वक्त इसके कान जो है वो गौर से सुनते रहे कि मेरे मालिक का हुक्म आए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मालिक का हुक्म आए और मेरे कान बंद हो, मुझे उसकी आवाज ही ना आए, मुझे पता ही ना लगे कि मेरे मालिक का हुक्म क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता ये, बल्कि हर वक्त ये गोश बर आवाज रहता है, मेरे मालिक का हुक्म जैसे ही आएगा मैं उसको बजा लाऊंगा, फौरन उसको मैं जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा उस हुक्म को, ठीक है ना। तो ये बंदा कहलाता है। क्या चंद अल्फाज में हजरत ने बंदे की तारीफ उर्दू जुबान में करी है ना। ख्यालात कैसे ठीक करें? ख्यालात ठीक करने के लिए सबसे पहले तो बंदे को इरादा करना होता है, ठीक है ना, कि मैं अपने ख्यालात को ठीक करना चाहता हूँ, ये होता है इरादा करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने रब से दुआ करनी होती है, मदद मांगनी होती है कि ए अल्लाह, मैं तो अपने ख्यालात को ठीक करना चाहता हूँ लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कर नहीं सकता, तो ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे, मेरे ख्यालात को ठीक फरमा दे। अभी हाल ही में एक ताल्लुक वाले साथी हैं, तो उनके साथ बात चल रही थी, उनके कुछ मसले मसाइल वगैरह, तो इस आजिज ने उनको एक दुआ लिख करके दी, हदीस मुबारका से वो दुआ है, अगर आप लोग तो याद दिलाएं तो क्लास के बाद उसको ग्रुप पर भी भेज देंगे। नबी अलैहि सलाम ने इस तरह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अज्अल वसाविस कल्बी, ए अल्लाह मेरे कल्ब के जो ख्यालात हैं उनको बना दे, खशियतक व जिक्रक, अपने खशियत वाले और अपने जिक्र वाले, राइट, कि मेरे जो दिल के ख्यालात है ना, यानी मेरे जिसको एक्चुअली हम उर्दू जुबान में कहते हैं जहन के ख्यालात, उनको अपने खौफ, अपने खशियत और अपने जिक्र वाले ख्यालात बना दे, अल्लाहुम्मा अज्अल वसाविस कल्बी खशियतक व जिक्रक, ठीक है, ऐसे दुआ मांगी नबी अलैहि सलाम ने। तो अल्लाह ताला से ऐसे दुआ मांगे, ठीक है। अब दुआ जब मांग लेते हैं तो उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, नहीं, दुआ मांगने का के बाद फिर दवा करते हैं, यानी कुछ आपको असबाब वगैरह, कुछ हाथ पैर मारने होते हैं ना, कि भाई हाँ अब मैं कुछ करूं भी इसके लिए, तो इल्म हासिल करना शुरू करें, ठीक है ना, इल्म हासिल करना शुरू करें कि क्या ख्यालात अच्छे ख्यालात होते हैं और क्या ख्यालात बुरे ख्यालात होते हैं, ठीक है ना। इल्म हासिल करता जाए, जो अच्छे ख्यालात हैं उनको अपनाता जाए और जो बुरे ख्यालात हैं उनको अपने जहन से निकालता जाए, उनके ऊपर तौबा करता जाए, अल्लाह ताला से माफी मांगता जाए और उन ख्यालात को तर्क करता जाए, ठीक है ना। तो ये तीन स्टेप्स हो गए आपके सवाल के जवाब में। पहले तो रियलाइज करे कि मुझे अपने, यानी इरादा करे कि मुझे अपने ख्यालात को अच्छा बनाना है, फिर अल्लाह ताला से मदद मांगे दुआओं के जरिए से, और तीसरी चीज इल्म हासिल करे, और जैसे जैसे इल्म हासिल करता चला जाए वैसे वैसे जो है वो उसके ऊपर अमल भी करता जाए, अच्छे ख्यालात को अपनाता जाए, बुरे ख्यालात को अपने जहन से निकालता चला जाए, ठीक है, उनको बुरा समझता चला जाए और उनको तर्क करता चला जाए, इस तरीके से इंसान के ख्यालात अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। ये हो गया पहला वस्फ। अच्छा, इसके ऊपर किसी ने अगर सवाल करना हो कि ये जो फरमाया ना कि हर वक्त गोश बर आवाज रहे, कि जिस काम का हुक्म हो तो वो बजा लाऊं, तो गोश बर आवाज है तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा मुहावरा कि अपने कान खड़े रखे, मेरे रब की आवाज आएगी, मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। लेकिन जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बात का अंदाजा होगा कि फिर इसके बाद ये आजिस क्या कहता है कि रब की आवाज आएगी, फिर रब की आवाज आती है, किसी को आई है? नहीं, रब की तो आवाज कभी आई नहीं किसी को और ना कभी आएगी इस दुनिया की जिंदगी में, तो रब की आवाज ने आना नहीं है, ठीक है ना। वो तो जब इमाम मेहदी आएंगे तो फिर वो कोई एक आवाज आएगी, वो भी कोई अल्लाह की आवाज नहीं है कि इमाम मेहदी जो है ना वो तवाफ कर रहे होंगे तो ऊपर से आवाज आएगी कि हाजा मेहदी, ये मेहदी है, इनके साथ बैत कर लो, ठीक है ना, आवाज आएगी, लेकिन वो भी कोई अल्लाह की आवाज नहीं है, वो हो सकता है किसी फरिश्ते की आवाज हो, मोस्ट प्रॉब्ली फरिश्ते की आवाज होगी, अल्लाह की आवाज तो हम सुन भी नहीं सकते। तो भाई अल्लाह की आवाज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर गोश भर आवाज रहने का फायदा क्या है ना, जब आगे से कोई आवाज ही नहीं आनी तो फिर फायदा क्या। तो फिर इसका क्या जवाब है कि अल्लाह की आवाज कोई नहीं आने वाली है ना। अल्लाह की आवाज का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के रसूल थे उन्होंने जो अहकामात बताए हैं उन अहकामात के लिए गोश बर आवाज रहे, ठीक है ना। और वो अहकामात कौन बताता है? वो अहकामात उलमाए कराम, जिनसे कि हमारा आवाज वाला ताल्लुक होता है, अल्लाह के रसूल से भी आवाज वाला ताल्लुक नहीं है कि अल्लाह के रसूल जो है वो हमें आवाज दे दे करके बताएं, इसलिए कि हमने तो अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे पास हाजिर नाजिर होकर के हमें तो हुक्म नहीं देने वाले हैं, ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हो जाते हैं और फिर हमें हुक्म देते हैं ये करो ये करो ये करो। हाँ, ख्वाब में किसी को ज्यारत हो जाए तो वो और बात है, लेकिन ख्वाब के अहकाम की तो वैसे ही कोई शरी हैसियत नहीं होती है ना। बेशक आपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करी, लेकिन उसके अंदर कोई हुक्म जो है ना वो शरी हुज्जत नहीं होता, ठीक है ना। ख्वाब में कोई हुक्म अगर आपको दिया भी जाए ना, वो भी कोई उसकी कोई शरी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, आप उसकी अगर कोई वो अच्छा हुक्म है तो आप उसके ऊपर अमल करें, और अगर कोई हुक्म जो है वो शरीयत के खिलाफ है, ख्वाब के अंदर आपको दिया जा रहा है लेकिन शरीयत के मुताबिक वो सही नहीं है, आप उस पर अमल नहीं कर सकते। बहरहाल, मकसद यहाँ पे कहने का ये है कि आवाज़ तो नबी अलैहिस्सलाम की भी नहीं आती, तो फिर किसकी आती है? मौलवी साहब की आती है आवाज़, मौलाना साहब, जिनको कि हम अपने नाउज़ुबिल्लाह कदमों की खाक समझते हैं, ठीक है ना। तो असल में तो वही है कि जिनकी आवाज़ के ऊपर हमें लब्बैक कहना होता है, ठीक है। तो हम वही काम नहीं करते, बाकी जो है वो हमने सारे उल्टे सीधे काम करने होते हैं, या सीधे उल्टे भी करने होते हैं, सीधे भी करने होते हैं, लेकिन जो करना था ना वो नहीं करना होता खाली, ठीक है। तो असल में तो ये मकसद इसका ये होता है कि उलमाए हक जो है हमारे जमाने के, वो जो हमें हुक्म दे रहे हो ना, तो उन हुक्मों को बजा लें, ठीक है। बैत लेने का तरीका, हमको बैत लेना है आपसे, अच्छा बैत करना है, लेना नहीं होता हो, करना होता है। तो अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह क्लास के आखिर में तौबा कलमात, वैसे आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो अच्छा वो आपने याद दिला दिया, तौबा कलम के कलमात इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। दूसरी सफर जल्दी से थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं कि फरमाया यमशूना अलल अर्द हौना, कि यानी चलते हैं वो जमीन पर तवाजो के साथ, इनके सारी तवाजो। लफ्ज हौन का मफहूम इस जगह सकीनत व वकार और तवाजो है, ठीक है ना। सकीनत सुकून से निकला, कि ऐसी चाल हो कि जिसके अंदर एक सुकून हो, एक एक यानी बेचैनी ना हो, जिस तरह से कुछ लोग बेचैनी के अंदाज में चलते हैं ना, नहीं बल्कि सकीनत के साथ, वकार के साथ और तवाजो। अच्छा, सकीनत जो है ये जाहिरी फॉर्म को भी कह सकते हैं और अंदरूनी सुकून को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अंदरूनी सुकून भी जिसको हासिल हो जाता है ना, तो उसकी भी फिर जिंदगी के मामला जो है उनके अंदर वकार भी आ जाता है और तवाजो भी आ जाती है। हालांकि ये बजाय दोनों अलग अलग चीजें हैं। वकार का मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही अकड़ करके चलना, वकार के साथ जैसे कि दूसरे बंदे जो है वो हैबत ज्यादा हो जाए इससे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो वकार मुराद नहीं है जो कि अगले बंदे के ऊपर जो है वो अपने बड़ाई को साबित करे, बल्कि तवाजो, ठीक है। तो वकार एक पॉजिटिव चीज है जो कि तवाजो के साथ शामिल हो सकती है किसी शख्स के आमाल के अंदर, कि वकार भी हो और तवाजो भी हो, ठीक है। तो अकड़ कर ना चले, कदम मुतकब्बराना अंदाज से ना रखे, ठीक है। अब जैसे कोई पहलवान साहब जो है वो चलते हैं, वही एक मुतकब्बराना चाल नजर आती है, ठीक है, तो उस तरह से ना चले। बहुत आहिस्ता चलना मुराद नहीं है, क्योंकि वो बिला जरूरत हो तो खिलाफ सुन्नत है। भाई आहिस्ता चलने की जरूरत क्या हो सकती है, कि अगर आप किसी बूढ़े जयीफ शख्स के साथ चल रहे हो तो उस वक्त आपको आहिस्ता चलना चाहिए ना, ताकि आप उसकी मदद कर सकें, उसके साथ साथ चल सकें। या किसी छोटे बच्चे के साथ चल रहे हो तो उसमें भी आप तेज तेज नहीं चल सकते, क्योंकि वो बच्चा तो आपके साथ नहीं तेज चल सकता। तो जरूरतन आहिस्ता चलना वो मना नहीं है, लेकिन बिला जरूरत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बड़ा जो गोया के वो तसन्नो कहते हैं इसको, तसन्नो, आप जो है ना वो यानी मॉक कर रहे हैं अपनी आजिजी को, अपनी इनकिसारी को, ठीक है। ऐसे ये खिलाफ सुन्नत है, इस तरीके से बिला जरूरत आहिस्ता आहिस्ता चलना ये खिलाफ सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की जो सिफत शमाइल नबविया में मनकूल है, सही तिर्मिजी, जो जामे तिर्मिजी, जो हदीस मुबारक की सही तरीन किताबों में से एक किताब है जामे तिर्मिजी, ठीक है। तो उसके अंदर एक बाब है शमाइल नबुविया, ठीक है, जिसको शमाइल तिर्मिजी भी कहते हैं। तो उसमें ना नबी अलैहि सलाम की ये जो जाहिरी शमाइल हैं, यानी आप की जाहिरी वज़ाकता और चेहरा मुबारक और लिबास मुबारक और चाल मुबारक और ये सारी चीजें ना उसके अंदर मौजूद है शमाइल तिर्मिजी के अंदर, ठीक है। तो ये सिफत जो चलने से मुताल्लिक शमाइल नबविया में मनकूल है, उससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना बहुत आहिस्ता नहीं बल्कि किसी कदर तेजी के साथ था। ठीक है, यानी ऐसे चलते थे कि गोया कोई शख्स जो है ना, वो जब किसी हाइट के ऊपर, बुलंदी के ऊपर जब चल रहा होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे झुक करके वो तेज तेज ऊपर चलने की कोशिश करता है, ताकि ताकि वो तेजी के साथ चढ़ जाए। अगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेगा ना, तो वो उस बुलंदी के ऊपर ना, फिर यानी वो चढ़ नहीं पाएगा, वो बहुत जल्दी यानी उसको बहुत वक्त लगेगा ऊपर चढ़ने में। ठीक है, तो जिस तरीके से एक बुलंदी की तरफ इंसान चलता है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उस तरह से चला करते थे। ठीक है ना, और कदरे तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ नहीं। हदीस में है, कअन्नमल अर्दा तत्वी लहू, कि यानी आप ऐसा चलते थे कि गोया जमीन आपके लिए सिमटती है। यानी जमीन सिमटती का मतलब क्या, कि जमीन तो कुछ कोई सिमटती कोई थोड़ी है, जमीन जमीन तो जैसी है वैसी रहती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ना ज्यादा लंबे रास्ते को कम वक्त के अंदर उबूर कर लिया करते थे। ठीक है, तो वो कुछ कैसे हो सकता है, जब इंसान थोड़ा तेज चले। ठीक है, तो लंबे रास्ते आपके लिए सिमट करके छोटे हो जाते थे, यानी आप जल्दी उनको अबूर कर लिया करते थे। यानी एक्टिवली, जिसको हम कहते हैं ना एक्टिवली चलना। ठीक है, तो आप सदस्य इस तरह से चलते थे। इसीलिए सलफ सालिहीन ने बतकल्लुफ, मरीजों की तरह आहिस्ता चलने को अलामत तकब्बुर व तसन्नो होने के सबब मकरूह करार दिया है। ठीक है, यानी ये कोई अच्छी अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरीके से बना बना करके अपनी चाल को चलें। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा कि बहुत आहिस्ता चल रहा है, पूछा क्या तुम बीमार हो, उसने कहा नहीं, तो आपने उस पर दुर्रा उठाया, यानी जो एक छोटा हंटर जिसको कहते हैं ना, चाबुक टाइप की चीज। ठीक है, तो चाबुक को गोया के उठाया और हुक्म दिया कि कुव्वत के साथ चला करो, यानी उसको डराने के लिए चाबुक उठाया, मारूंगा तुम्हें अगर तुम ऐसे चलोगे ना, तो तुम्हें एक लगाऊंगा। ठीक है, ये मतलब था इसका, और उसको हुक्म दिया कि कुव्वत के साथ चला करो। भाई तुम नौजवान हो, तुम कोई बूढ़े मरियल ऐसी कोई चीज को थोड़ी हो, तो जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है तो वैसे तुम चला भी करो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत यमशून अलल अर्द हौनन की तफसीर में फरमाया कि मोमिनीन मुखलिसीन के तमाम आज़ा व जवारेह, आंख कान हाथ पांव, सब अल्लाह के सामने जलील व आजिज होते हैं। ना वाकिफ उनको देखकर माजूर व आजिज समझता है, हालांकि ना वो बीमार हैं ना माजूर, बल्कि तंदुरुस्त कवी हैं, मगर उन पर हक तआला का खौफ ऐसा तारी है जो दूसरों पर नहीं है। उनको दुनिया के धंधों से आखिरत की फिक्र ने रोका हुआ है। अब ये क्या फरमा रहे हैं कि बजाहिर ऐसा लगता है कि यानी बीमार हैं, हालांकि वो बीमार नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, इसका मतलब ये है कि चलते तो वो तेज तेज ही हैं, लेकिन कंधे ना अकड़ के नहीं चलते। ठीक है ना, कंधे उनके नॉर्मल हालत में रहते हैं, जैसे झुके हुए कंधे जिनको जिनको कहेंगे, और उनके जो चेहरे होते हैं ना, वो चेहरे जो है ना, वो अक्सर औकात वो एक फिक्र की हालत में रहते हैं, उनके चेहरों से फिक्र जो है ना वो नुमाया होती है। ठीक है, हर वक्त नहीं होती, यानी अपने घर वालों के साथ हैं तो घर वालों के साथ जो है वो हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं तो दोस्तों के साथ भी खुश और खुर्रम रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब दोस्तों के साथ आप हर वक्त तो नहीं रहते ना, घर वालों के साथ आप हर वक्त तो नहीं रहते ना, तो इनके अलावा जो वक्त होते हैं ना, उनके अंदर ये फिक्र में मुब्तला रहते हैं, और इनके चेहरों से इनकी फिक्र जो है वो नुमाया भी होती है। ठीक है, तो ये मुराद है यहाँ पर कि उनके ऊपर खुदा का ऐसा खौफ तारी होता है जो दूसरों पर नहीं होता। उनको दुनिया के धंधों से आखिरत की फिक्र ने रोका हुआ है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा नहीं करता और उसकी सारी फिक्र दुनिया ही के कामों में लगी रहती है, तो वो हमेशा हसरत ही हसरत में रहता है कि दुनिया तो सारी मिलती नहीं और आखिरत में उसने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, क्या मतलब हसरत ही हसरत में रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है हर वक्त। ठीक है ना, कि ओ अभी तक कारोबार में जो है वो इतना फायदा मुझे क्यों नहीं हुआ, अभी तक मैंने टारगेट्स मीट क्यों नहीं किए कारोबार के टारगेट्स, अभी तक मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इतना क्यों नहीं हुआ, अभी तक इतना क्यों नहीं हुआ, अभी तक उस शख्स से ज्यादा मेरे पास पैसे क्यों नहीं आए, उस शख्स से ज्यादा अच्छी गाड़ी क्यों नहीं आई, है ना। वो देखता रहता है दूसरों के गाड़ियों को, देखता है घरों को, देखता है कपड़ों को, देखता है, और हर वक्त कुढ़ता रहता है अपने अंदर, कुढ़ता रहता है अपने अंदर, ठीक है ना। तो ये मुराद है कि वो हमेशा हसरत ही हसरत में रहता है, जिसको हमारे बुजुर्ग कहते हैं 99 के चक्कर में रहता है, ठीक है ना। हर वक्त अपने माल को जो है ना वो गोया के उसके पास 99 रुपए हैं, और वो कहता है कि बस 100 हो जाएंगे ना फिर मैं इत्मीनान से बैठूंगा, लेकिन उसके पास 100 कभी भी नहीं होते, हर वक्त उसके पास उसके टारगेट से कम ही होता है, ठीक है ना। तो वो हर वक्त अपने टारगेट के पीछे भागता रहता है, जैसे कि कोई साए के पीछे भागता है, ठीक है ना। उसके जो माली टारगेट्स होते हैं ना वो साए की मानिंद होते हैं, जिस तरह एक शख्स साए के पीछे भागता रहे तो कभी साया उसके हाथ में आएगा, साया तो कभी भी हाथ में नहीं आएगा, साया तो हमेशा जो है वो बंदे से दूर ही रहेगा, ठीक है ना। लगेगा ऐसे जैसे कि बस अब मैं झुकूंगा और साए को पकड़ लूंगा, लेकिन ये एक धोखा होता है, आप झुक करके साए को कभी भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो जो साए के पीछे भागते रहते हैं वो कभी भी इत्मीनान में नहीं आ सकते। तो इस शख्स का मामला यही रहता है। और जिस शख्स ने अल्लाह की नेमत सिर्फ खाने पीने की चीजों को समझा है और आला इखलाक की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका इल्म बहुत थोड़ा है और अजाब उसके लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ तक हम तो लेक्चर को रोकते हैं, बाकी जो आप लोगों ने सवाल किया है और तौबा कलमात है वो अब हम करके इस क्लास को रैप अप करते हैं, फिर आपकी फिताई क्लास भी होनी है। क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि चाल इंसान की शख्सियत की अक्कासी करती है और मोमिन को ला ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून वाली सिफत भी दे दी जाती है, तो इस कैफियत का इजहार तमाम आज़ा व जवारे से होता था, तो चाल भी यमशूना अलल अर्दी हौना बन जाती है। मतलब ठीक है, खींचतान करके तो आप उसको कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो आपने लिखा है कि जी ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून, तो अब ये तो ये है ना कि जी उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होता और कोई उनको हुजन नहीं होता, बाहर का खौफ नहीं होता, अंदर का गम नहीं होता, ठीक है। तो यमशूना अलल अर्दी हौना, तो अब ये तो थोड़ी सी एक डिफरेंट सी कैफियत है, वो एक डिफरेंट सी कैफियत है, वो तो दुनियावी खौफ और दुनियावी हुजन की बात हो रही है, और यहाँ पर जो है वो आखिरत के खौफ और आखिरत के हुजन की बात हो रही है कि उनके ऊपर ये तारी रहता है। बहरहाल ठीक है, जैसे आप चलिए, मेरे ख्याल में आप इस सवाल को अगर जरा रिवर्ट कर लें तो फिर वो थोड़ा और समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो तौबा कलमात के इनसे वादा चूंकि किया हुआ था, तो इस वजह से आज जो है वो क्लास में तौबा कलमात पढ़ेगा। इस तौबा के कलमात की जो है ना वो दो हैसियतें होती हैं, एक तो हैसियत ये होती है कि आप अपने दिल में ये नीयत और इरादा करें कि मैं अपने ईमान की तजदीद कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा इस्तगफार कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस नीयत के साथ जब आप इन कलमात को पढ़ेंगी तो ये कलमात आपके लिए तजदीद ईमान और तौबा के कलमात बन जाएंगे, ठीक है बस। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ये भी नियत कर लें कि जी मैंने ये तौबा के कलमात जो हैं वो तौबा की नियत से भी पढ़े हैं और इस नियत से भी कि अब आइंदा आने वाली जिंदगी में चूंकि मैं इस तौबा पर कायम भी रहना चाहती हूँ, तो इस कायम रहने के लिए मैं एक इस्लाही ताल्लुक भी बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना ये कलिमात जो है वो तौबा के साथ साथ बैत के कलिमात भी कहलाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये बैत के कलिमात भी बन जाते हैं, कि बैत का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो एक वादा कर लिया है कि जी अब मैं ना आपके साथ आपकी रहनुमाई में, आपकी गाइडेंस के अंदर जो है ना वो अपनी आने वाली जिंदगी के मामलात को کو طے کروں گی تاکہ میں اس میں گناہوں سے بچ سکوں، شیطان کے اور نفس کے دھوکوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزار سکوں. اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق بنا لینا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کو بیعت کرنا بھی کہتے ہیں. تو جس کی جیسی نیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا عمل اسی نیت کے لیے ہی ہوتا ہے. انما لامرئ ما نوى، وہ ہے نا انما الاعمال بالنیات کی جو پوری حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ آگے آتے ہیں، انما لامرئ ما نوى، کہ ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کری. ٹھیک ہے، تو کسی نے خالی پچھلے گناہوں سے توبہ کی نیت کری ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت قبول فرما لیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما لیں، ایسا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ڈیپینڈنگ آن دا اخلاص آف دا نیت. لیکن اگر کسی نے آگے کی بھی اصلاحی تعلق کی نیت کری ہے تو اس کے ساتھ وہ والا پھر معاملہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی نیت ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے دہرائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ کل توبہ کے کلمات ہمارے مشائخ پڑھاتے ہیں، جس میں کلمہ طیبہ بھی آ گیا، کلمہ شہادت بھی آ گیا، ایمان مفصل بھی آ گیا، ایمان مجمل بھی آ گیا، اور استغفار بھی آ گیا، اور برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد طلب کرنا بھی شامل ہو گیا. یہ کل ہو گئے توبہ کلمات، اور ان کے بعد جو مشائخ معمولات بتا دیتے ہیں وہ بھی جلدی سے سن لیجیے. باقی جس نے اصلاحی تعلق بنانا ہے تو پھر واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لے، بعد کی تفصیلات ان کو واٹس ایپ پہ بتا دی جائیں گی. تو کل 6 معمولات ہیں. پہلا، کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا. دوسرا، صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی پڑھنا. تیسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. چوتھا، وقوف قلبی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان بنا کر کے رکھنا، یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں، مراقبہ کرنا. مراقبے کی تفصیل جو پوچھے گا اس کو بتا دیں گے انشاءاللہ. تو پانچواں ہو گیا مراقبہ کرنا، اور چھٹا کہلاتا ہے رابطہ شیخ، یعنی شیخ کی رہنمائی کے اندر دین کا علم حاصل کرنا اور اپنے معاملات اور معمولات تمام دین کی روشنی میں بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب رابطہ شیخ کہلاتا ہے. کل 6 معاملات ہو گئے. ان معاملات کو پابندی سے کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور نیک بننا آسان ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی نے پرائیویٹلی بھی ایک سوال لکھا ہے غالباً، تو اس کو پڑھ لوں جلدی سے، کہ اگر دوسری بار اور تھرڈ ٹائم سیم مسٹیک ہو جائے آفٹر توبہ تو پھر کیسے اس کو کریں فار ڈیلی روٹین ایشوز. ڈیلی روٹین میں جو گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کرنے کے باوجود، تو ان کے اوپر صرف آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ، یہ کہتے نا کافی ہے، صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی ہے، और दिल में नादिम और शर्मिंदा हो जाएं, और उसके बाद जो है ना, जस्ट स्टार्ट इन यू, स्टार्ट फ्रेश, ठीक है, और कहें कि बस मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला यकीनन माफ़ी को कबूल कर लेते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर उसके बाद जो मशाइख ने मामूलात बताए हैं तो उनमें लगे रहें, ठीक है। तो इस तरह से गुनाह तो इंसान से होते रहते हैं, जब तक इंसान का नफ्स नफ्स मुतमईना नहीं बन जाएगा, जब तक कल्ब कल्ब सलीम नहीं बन जाएगा, तो ये तो गुनाहों का सिलसिला तो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए दोनों काम करने होते हैं कि जब गुनाह हो जाए उसी वक्त तौबा कर ले, ठीक है ना। और दूसरा काम कि जो मशायख जो है बता रहे हैं करने के लिए मामूलात, उनको करते रहें, ताकि साथ साथ जो है वो नफ्स भी नफ्स अमारा से नफ्स मुतमईना में तब्दील होता जाए। जब वो तब्दील हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर ये रोज रोज के तमाशे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर जो है वो एक इत्मीनान सुकून वाली जिंदगी रहेगी, अल्लाह ताला की अतात वाली, जो पिछले दिनों आप लोगों को एक बयान भी भेजा था ना कि फिर वो मकरूहात शरिया मकरूहात तबिया बन जाएंगी। फिर जो है ना, वो कभी कभार गलती से गुनाह हो भी गया ना, तो उसके ऊपर भी इत्मीनान नहीं होगा, वो फौरन जो है ना, वो आपने उसको उससे तौबा कर लेनी है, तो वो फिर मसला नहीं रहता। लेकिन अनटिल देन ये मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपको चलें जी, ठीक है, फिर आप क्लास खत्म करते हैं। मेरे ख्याल में आपकी फिकह की टीचर मौजूद हैं, तो वो फिकह पढ़ाना शुरू करेंगे। सलाम अलैकुम।